सहर्ष निमंत्रण को स्वीकार करते हुए ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन जी उपस्थित है। हम सभी एक हाथ की ताली से दीदी जी का स्वागत करेंगे। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इसके साथ ही हमारे बीच डॉक्टर दामिनी बहन भी गीत गाएंगी और हम सभी 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।
मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है। प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है। मगर अपने इस तन में मैं रोशनी हूँ। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। मेरा कर्म शांति मेरा धर्म शांति मेरा घर है शांति मैं हूँ शांति। मेरा कर्म शांति मेरा धर्म शांति मेरा घर है शांति मैं हूँ शांति। मैं भंडार हूँ सद्गुणों शक्तियों का। मैं भंडार हूँ सद्गुणों शक्तियों का। मेरे सब खजाने में कितनी धनी हूँ। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। अजर हूँ मैं अमर हूँ वही रूप रंग है शिव ज्योति बिंदु मेरे अंग संग है। अजर हूँ मैं अमर हूँ वही रूप रंग है शिव ज्योति बिंदु मेरे अंग संग है। सत्यम शिवम सुंदरम मैं हूँ रचना। सत्यम शिवम सुंदरम मैं हूँ रचना। प्रभु चांद सा है तो मैं चांदनी हूँ। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ।
ओम शांति। धन्यवाद दामिनी बहन। आज उर्मिला बहन हम सभी के बीच में है। संक्षिप्त में आपका परिचय देना चाहूंगी। 35 वर्षों से आप बाबा के इस ज्ञान में चल रहे हैं। पिछले 16 वर्षों से आप शांतिवन ज्ञानामृत प्रेस में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हिंदी मैगजीन में आप सभी पढ़ते हो हिंदी मैगजीन। उसमें जो उर्मिला बेन के जो आर्टिकल्स और लेख आते हैं बहुत ही प्रेरणादायक स्व उन्नति भरे वो आप लिखते हैं और साथ ही ब्राह्मणों के रिफ्रेशिंग कोर्सेस, भट्टी और स्व उन्नति के क्लासेस भी आप करवाते हैं। आज भी हम सभी को स्वस्थिति की महसूसता के बारे में बताएंगे, प्रकाश डालेंगे। इसलिए मैं नम्र अनुरोध, उर्मिला बहन जी हम सभी को लाभान्वित करेंगी। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की प्यारे बाबा की जो मुरली हम सब ने सुनी, तो सारी मुरली ही अस्वस्थ स्थिति की महसूसता पर थी। देखो तो भी आत्मा, बोलो तो भी आत्मा, सुनो तो भी आत्मा। कहती है एक होता है आत्मा आत्मा कहना, और एक होता है आत्मा हो जाना। तो द्वापर युग में तो हमने कहा, लेकिन संगम युग में हमको आत्मा हो जाना है। हम अपने चारों ओर देखते हैं, आत्मा की अनुभूति कराने वाली बहुत सारी बातें हमारे चारों ओर हैं। आप एक पेड़ को ही देख लीजिए, जब पेड़ को देखते हैं तो आत्मा की अनुभूति बड़ी सहज होती है। पेड़ का एक बीज है लेकिन दिखाई नहीं देता, पर पेड़ को ताकत कहां से मिलती है? बीज से ही मिलती है। और उस बीज से कितना विस्तार हुआ है, इसी तरह से आत्मा से शरीर के हाथ पांव कितना लंबा विस्तार हो गया। वो बीज जमीन के नीचे, लेकिन जो बाबा ने हमको झाड़ बताया उस झाड़ में बीज ऊपर है और आत्मा रूपी बीज भी ऊपर है। इसलिए दुनिया में कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा पिंड में है ऐसा ही ब्रह्मांड में भी है। ये पिंड है तो पिंड में ये बीज ऊपर है ना, ऐसे ब्रह्मांड में भी जो बीज है वो ऊपर है। तो पेड़ को देखते हैं तो समझ में आता है कि बिना बीज के पेड़ नहीं हो सकता और बिना आत्मा के कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। आत्मा बैठी है, आत्मा इसमें मौजूद है, तो ये व्यक्ति चल रहा है, देख रहा है, बोल रहा है। मैंने शायद मई की मैगजीन में एक आर्टिकल डाला है, स्वयं की तलाश, बहुतों ने पढ़ा होगा। उसमें एक संत हुए हैं महर्षि रमण, उनका एक एग्जाम्पल डाला है। जब वो 12 साल के थे तो उनके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। घर के लोगों ने कहा रोते रोते, बेटा तुम्हारे पिताजी चले गए। तो बच्चा घर से बाहर गया, उसने देखा पिताजी लेटे हुए, घर से बाहर लिटा रखा था। तो वापस आया, बोला नहीं नहीं पिताजी कहीं नहीं गए, घर के बाहर है। घर वालों ने कहा नहीं पिताजी चले गए बेटा, और फिर उन्होंने रोना चालू कर दिया। वो फिर गया, पिताजी को आंख नाक कान हाथ मुख सब कुछ है, और ये कहते हैं पिताजी चले गए। फिर बोला वो पिताजी बाहर हैं, गए नहीं है, तुम रो क्यों रहे हो? घर वालों ने कहा नहीं नहीं पिताजी चले गए। तो बच्चा सोचने लगा कि आज तक तो पिताजी एक ही था, आज ये दो कैसे हो गए? एक ऊपर चला गया और एक ही नीचे, और दोनों में से असली कौन था आज तक किसी ने बताया ही नहीं। अगर जाने वाला असली था तो किसी ने बताया क्यों नहीं कि असली वो है, और अगर ये असली है तो ये मानते क्यों नहीं है कि पिताजी यही है? क्यों कहते हैं पिताजी चला गया? तो बच्चा द्वंद्व में फंस गया, मैं किसको असली मानूं, किससे पूछूं, ये तो कोई बताने वाला वहां था नहीं। तो कहते हैं उसने घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया तो एक मंदिर में गया, मंदिर में सो गया रात भर। मंदिर में कुछ मिष्ठान पड़ा होगा, चींटियां बहुत थी तो चींटियों ने उसके शरीर को काटा, खून निकला। फिर मन में सवाल आया कि जैसे पिताजी दो थे, अगर मैं भी दो हूं तो ये खून कौन से में से निकला? जो ऊपर चला जाएगा उसमें से निकला या जो नीचे रहेगा उसमें से निकला? अब खून तो जरूर नीचे वाले में से ही निकला होगा, क्योंकि इसी में है खून। तो मैं कौन हूं फिर, ऊपर जाने वाला के नीचे रहने वाला? ये खून मेरे में से निकला या शरीर में से निकला? फिर उसके मन में प्रश्न पैदा हुए। उसके बाद वो चिंतन करता गया, कहीं कहीं से अपनी शंकाओं का समाधान करता गया, और अंत में उसको महसूसता आई कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। बस यही महर्षि रमण को अनुभव हुआ कि ये जो परिवर्तनशील है, ये शरीर मैं नहीं हूं, लेकिन इसके भीतर विराजमान मैं आत्मा हूं, और वो महर्षि कहलाने लगे। और हम जिस दिन बाबा के यज्ञ में आए, हमको उसी दिन महसूसता हो गई थी ना कि हम आत्मा है। तो उसने कितने बरस तपस्या की तब वो महर्षि बना, और हम पहले दिन ही बन गए, कोई माने या ना माने, कोई कहे या ना कहे, लेकिन महसूसता तो पहले दिन हो ही गई ना। तो वास्तव में आत्मा को महसूस करना बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि शरीर की जितनी भी एक्टिविटी है उनके केंद्र में विचार है। आप जो भी कुछ करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि वैसा करने के लिए विचार उठा। अभी भी विचार उठ रहे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं आई थिंक देयर फोर आई एम, मैं हूं। इस बात का प्रमाण क्या है? मैं सोच रहा हूं। ये नहीं कहा आई सी देयर फोर आई एम, मैं ना देखूं तो भी मैं हूं। आई स्पीक देयर फोर आई एम, मैं ना बोलूं तो भी मैं हूं। आई हियर देयर फोर आई एम, नहीं, मैं ना सुनूं तो भी मैं हूं। आई थिंक देयर फोर आई एम, मैं हूं। इस बात का प्रमाण क्या है? मैं सोच रहा हूं। अभी भी हम सोच रहे हैं ना, निद्रा में भी सोचती है ना, जागृत अवस्था में भी सोचती है ना, बीमार हो जाए तो भी सोचती है ना, कहीं भी रहे हमारा सोचना नहीं रुकता। कभी सुनना रुक जाता है, कभी देखना रुक जाता है, कभी बोलना रुक जाता है, कभी चलना रुक जाता है, कभी खाना रुक जाता है, लेकिन क्या नहीं रुकता? सोचना नहीं रुकता। ये निरंतर की प्रक्रिया है। जब मैं केनिया में गई थी तो वहां एक डॉक्टर आते थे, शिवानी बहन का प्रोग्राम देखते थे, तो उन्होंने कहा कि बहन जी, शिवानी बहन आत्मा के बारे में बहुत बातें बताती है, मुझे कुछ सवाल पूछने थे, मैं तो उससे मिल नहीं सकता हूं, आपसे ही पूछ लेता हूं। तो कहा देखो, आज विज्ञान ने कितने बड़े बड़े यंत्र बना दिए, अगर आपको श्वास ठीक से नहीं आ रही हो तो सब स्वतंत्र काम करता, और अगर आपको ब्लड संचरण ठीक से नहीं हो रहा हो तो आजकल प्लास्टिक का हृदय बना देते हैं। दो दिन पहले बाबा ने मुरली में बोला, पर वो कितने दिन चलेगा वो अलग बात है, लेकिन फिर भी विज्ञान ने कमाल तो की है ना, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज बना दी और लगा दी। तो पूछने लगा कि जब विज्ञान ने हृदय बना दिया, श्वास का यंत्र बना दिया, तो आत्मा क्या करती? आत्मा का होना और ना होना कहाँ इम्पोर्टेंट है? विज्ञान तो शरीर को अपने बलबूते पे चला लेता है। तो जब उसने ये बात कही तो मेरे मन में विचार आया कि भाई ठीक है, विज्ञान ने हृदय बना लिया और विज्ञान ने श्वसन तंत्र भी बना लिया, एक बुजुर्ग आदमी को आपने दोनों लगा दिए और वो दोनों चल रही हैं, और आपको ये भ्रम हो रहा है कि बुजुर्ग आदमी जिंदा है। आप उससे जाके पूछो, दादाजी मकान बनाए कि नहीं बनाए? दादा जवाब देगा, जबकि उसका हृदय भी चल रहा है, उसका सांस भी चल रहा है, उसको पूछो दादाजी मकान के कागज कहाँ रखे, बताएगा क्यों? क्योंकि विज्ञान सोचने का यंत्र नहीं दे सकता। और मनुष्य क्या है? सोचने वाला एक प्राणी है। तो ये सोचने की जो योग्यता है ये किस में है? ये तो आत्मा में है। तो क्या विज्ञान सोचने का यंत्र बना सकता है? बनाया क्या? लोग कहते हैं कंप्यूटर आदमी के लिए सोचता है, लेकिन कंप्यूटर को किसने बनाया? कंप्यूटर में डाटा किसने डाले? वो भी तो मनुष्य ने डाले, और उसको भी ऑपरेट करने के लिए मनुष्य चाहिए। तो एक ही दुर्लभ चीज है जो विज्ञान नहीं बना पाया, और वो है सोचने। और यही कारण है कि मनुष्य मार कहाँ खाता है, जहां सोचने की बात आती है उसे सोचना नहीं आता, बाकी उसे सब काम आते हैं। छोटा बच्चा स्कूल जाने लगता है ना, तो आजकल तो केजी से इंग्लिश लग जाती है इंडिया में, तो वो 10-1 दिन जाने के बाद घर में बच्चे माँ बाप पूछते हैं, बेटा तूने कहा क्या सीखा? अच्छा बताओ तुम्हारी आंख कहाँ है, वेयर योर योर आई? तो बच्चा उंगली लगाता है, कहता है दिस इज माई आई। और माँ बाप तो एकदम उछलते हैं, हमारा बच्चा कितना पढ़ गया, आंख को आई बोलता है। अच्छा बेटा वेयर आर योर टीथ? और वो दांत को हाथ लगाता, माँ बाप फिर ताली बजाते, हमारा बच्चा तो 10 दिन में ही इतना पढ़ गया। 2-4 और लोगों को इकट्ठा करते हैं, आओ आओ बबलू से पूछो ये क्या बता रहा। उनके आगे वो फिर बोल के दिखाता है। सवाल ये है कि बच्चे ने सब कुछ बता दिया, क्या हमने बच्चे से पूछा वेयर इज योर माइंड? नहीं। बच्चे को पता पड़ा वेयर इज माई माइंड? नहीं पता पड़ा। ये चीज अंदर गुप्त रही। थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ ने कहा बेटा आंखें साफ कर, सिर्फ इतना सिखाया आंखें साफ कर, ये नहीं बताया आंख से क्या देखना है। आंख साफ कर ले, कान भी साफ कर ले, दांत भी ब्रश से, अगर दांत साफ नहीं किए तो बच्चे को डांट पड़ती है। दांत से खाना क्या है वो नहीं बताया, कान से सुनना क्या है वो भी नहीं बताया, सिर्फ साफ कर ले इनको। तो बच्चे ने क्या सोचा, बस इनको साफ करना ही जिंदगी का उद्देश्य। वो खूब रगड़ता है सुबह इनको ताकि मम्मी खुश हो जाए, और मम्मी खुश भी हो जाती है, मेरे बेटे ने मुंह धोना सीख लिया। उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अब मम्मी के बिना कहे ही सारे काम कर लेता है। अगर घर से बाहर निकल रहा है और थोड़ी शर्ट की कॉलर टेढ़ी बाकी है तो मम्मी कहती है बेटा शर्ट की कॉलर ठीक कर, बाल में कंघी नहीं की है तो माँ कहती है ये बाल उलझे पड़े हैं बाल ठीक कर। मन उलझा पड़ा है उसको भी सुलझा ले, मम्मी कभी नहीं कहती। उलझा है तो उलझा रहने दे, किसको दिखाई देता है, कॉलर तो दिखाई देता है, बाल तो दिखाई देते। तो बच्चा क्या सोचता है, बस दिखने वाली चीजों को संवारो, जो दिखता नहीं है उसको संवारने की कोई जरूरत नहीं। और ऐसे करते करते बच्चा 15 साल का हो गया, कपड़े भी ठीक हैं, बाल भी ठीक हैं, पर क्या ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है। अब थोड़ा बड़ा हुआ तो ये आउटलुक को ठीक करने वाली दुकानें खुल गई बाजार में, अगर खुद ठीक ना करे तो वो दुकानें कर देती हैं उसे ठीक, लेकिन दुकानों ने बाहर से उसको टिप टॉप कर दिया, भीतर से बेचारा कहीं ईर्ष्या है, कहीं क्रोध है, कहीं बदले की अग्नि है, पता नहीं क्या क्या है, पर वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा। तो सबसे अधिक खामियाजा किसने भुगता, मन ने। मन दिखाई नहीं दिया, मन की सोच को नहीं समझा। ये सोचने का काम जो निरंतर हो रहा है ये आत्मा कर रही है, ना आत्मा को जाना ना सोचने की प्रक्रिया को जाना। तो सिर्फ मुर्दे का श्रृंगार होता रहा, अब भी देखो शादी ब्याह में मुर्दे का खूब श्रृंगार होता है। थोड़े दिन पहले मैं किसी सेंटर पे गई थी, तो सेंटर की दीवार और थाने की दीवार एक थी। तो वो बहन मुझे छत पे ले गई और कहने लगी ये सामने देखो। तो मैं सामने देखने लगी, मैंने बोला ये क्या है भाई, ये तो लगता है कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, अलमारियां, ड्रेसिंग टेबल, बेड, बॉक्स। बोला ये थाना है। तो मैंने बोला थाने में ये चीजें क्या कर रही है भाई, यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल का क्या काम है, पुलिस वाले ड्रेसिंग टेबल में मुंह देखते हैं क्या, और यहाँ ये सब चीजें कैसी आ गई। तो बोला बहन जी आप मधुबन में रहती हो, आपको पता नहीं है ये लड़कियों के दहेज है, दहेज ये सब थाने में आ गए। तो मैं सोचने लगी कि जब कन्या पैदा होती है तो भारत में लोग चिंता करने लगती हैं, लड़की को 10 लाख दहेज देंगे, 20 लाख देंगे, अमुक चीज देंगे, अमुक चीज देंगे। अगर वो ये चिंता करते कि हम अपनी बच्ची के विचार अच्छे बनाएंगे, तो किसी की ताकत थी कि लड़की के विचारों को थाने में ले आता। चीजें तो थाने में आ गई। तो ये जितनी भी समस्याएं हैं ये क्यों पैदा हो रही हैं? क्योंकि विचारों का उद्गम कहाँ होता है, विचार कितने पैदा हो रही हैं, किस गति से पैदा हो रही हैं, उसका एहसास ही नहीं है, वो पैदा हो रही। तो उस डॉक्टर साहब को मैंने कहा कि भाई साहब आपका विज्ञान जिस दिन विचार पैदा करने वाला यंत्र बना देगा उस दिन हम मान लेंगे कि आत्मा की जरूरत नहीं, बाकी तब तक तो आत्मा की आवश्यकता है। और आत्मा का एहसास, जब आप अपने विचारों का एहसास करते हो, आत्मा का एहसास हो जाता है। अभी करके देखिए, एक मिनट बिल्कुल स्थिर होके बैठिए और ये देखिए कि आप क्या सोच रहे हैं। अपने विचार को आपको पकड़ना है, जैसे बिल्ली होती है ना, उसको चूहे को पकड़ना है, तो चूहे के बिल के पास आकर के और वो बैठ जाती है, और जैसे ही चूहा बाहर निकलता है तो उसको पकड़ने की कोशिश करती है। तो ऐसे ही आत्मा में से विचार बाहर निकल रहा है, हमको उसको पकड़ना है कि देखे कौन सा विचार निकलता है, उसको पकड़ना, फिर दूसरा निकले उसको भी पकड़ना, फिर तीसरा निकले उसको भी पकड़ना, फिर आपसे पूछेंगे कि कितने विचार आए, आपने कितने विचार पकड़े। ओम शांति। विचार आए, विचार आए, 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 तेज तेज आए, स्लो स्लो आए, पर आए। कोई ऐसा भी है जिसको बिल्कुल नहीं आए? क्योंकि जब आप विचारों को देखना चालू करेंगे, विचार आने बंद कर देंगे, आएंगे ही नहीं। जब आप सोचेंगे नहीं कि मैं क्या सोच रहा हूं, तब कोई विचार नहीं आएगा। और जैसे ही आप ध्यान हटाएंगे वो खूब स्पीड से आएंगे। बच्चे को देखा, छोटे बच्चे की शरारत को अगर आप देखना चालू कर दें, खड़े हो जाएं उसके पास, वो कोई चीज को तोड़ रहा था, मरोड़ रहा था, फेंक रहा था, उठा रहा था, आप उसके पास खड़े हो जाओ तो वो भी एकदम रुक जाएगा। और जैसे ही आप इधर उधर हो जाएंगे वो फिर अपने काम में लग जाएगा। तो जो मन की नेचर है वो बच्चे जैसी, जब आप इसे देखना चालू कर देते हैं ये स्थिर हो जाता है, कुछ नहीं करता। आप आत्मा बन करके आत्मा को ही देखना चालू कर देते तो विचारों की गति एकदम जीरो हो जाती। और जैसे ही आप आत्मा को देखना बंद करते हैं, संस्कार प्रमाण विचारों का उद्गम होना चालू हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं हमारे विचार कम गति में हो, कम से कम उत्पन्न हो, तो आप कुछ मत कीजिए, अपने विचारों को देखना चालू कर दीजिए। मैं क्या सोच रहा हूं? और विचारों को देखने की जो प्रक्रिया है वो पावरफुल प्रक्रिया तब बनती है जब हमारा तीसरा नेत्र क्लियर होता है। क्योंकि हम देखते तो तीसरे नेत्र से ही, आत्मा तीसरा नेत्र है और आत्मा अपने आप को अपने आप ही देखती, तीसरे नेत्र से ही हम आत्मा को देखते और आत्मा ही तीसरा नेत्र है। लेकिन हम क्या देखते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमको उस चीज का कितना ज्ञान है, इसलिए ज्ञान को तीसरा नेत्र कहा गया है। जिस चीज का हमें ज्ञान नहीं, हम उसे देख नहीं सकते, जिसका हमें ज्ञान है उसको हम तीसरे नेत्र से देख सकते। तो तीसरे नेत्र से भी पहले हमें क्या चाहिए, जिस चीज को देखना है उस चीज का ज्ञान चाहिए। और तीसरे नेत्र से केवल अलौकिक चीजें ही नहीं दिखती, लेकिन लौकिक दुनिया की चीजें भी दिखाई देती। अब जैसे एक डॉक्टर है, अभी अभी यहाँ एक डॉक्टर आता है और हृदय का डायग्राम बनाता है और अपने को बताता है कि इसमें ये तीन मेन आर्टरीज हैं, दो थोड़ी दूसरी आर्टरीज हैं, चार और आर्टरीज हैं, इसकी थिकनेस इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी लंबाई इतनी है। अब उसने सारी बातें हमको समझा दी। अब हम कहीं और जाते हैं समझाने, तो हम कैसे समझाएंगे? तीसरे नेत्र से जो कुछ हमने उससे जो कुछ सीखा वो हमारे भीतर स्टोर हो गया, और तीसरे नेत्र से हम उस स्टोर को देखते जाते हैं, डायग्राम को अपने भीतर देखते जाते हैं और किसी को सुनाते जाते हैं। आत्मा का ज्ञान भी ऐसे ही है, हम भीतर के नेत्र से आत्मा को देखते जाते हैं, महसूस करते जाते हैं, वो ज्ञान दूसरों को सुनाते हैं या दूसरों पर अप्लाई करते हैं। ये सामने बैठा व्यक्ति आत्मा है, अगर ये आत्मा नहीं होती तो ये व्यक्ति बैठ नहीं सकता था। ये आत्मा भी इस शरीर में कितने वर्षों से है, इससे पहले ये किसी और शरीर में थी, किसी और शरीर में है, ये आत्मा भी एक मुसाफिर है। हम इस नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं, तीसरे नेत्र से देख रहे हैं, दो आंखों से तो शरीर ही दिख रहा है, और अपने स्वरूप पर भी उस नॉलेज को अप्लाई कर रही। मैं आंखों से देखने वाली, मैं आत्मा हूं, देखने का काम मैं आत्मा कर रही हूं, आंखें केवल इंस्ट्रूमेंट, बोलने का काम मैं आत्मा कर रही हूं, मुख केवल इंस्ट्रूमेंट, ये मुझे महसूस था, मैं आत्मा नॉलेजफुल हूं, मुझे आत्मा में ज्ञान भरा है, वो ज्ञान इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से बाहर प्रकट हो रहा है, लेकिन ये नॉलेज आत्मा में है। अगर आज मैं आत्मा चली जाऊं तो ये इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, ये एहसास है, ये महसूसता, ये अनुभूति, ये तीसरा नेत्र जितना ज्यादा पावरफुल होता है उतना अनुभूति पावरफुल होती है। बाप अपने घर से आए हो अहमदाबाद से, मान लीजिए आप अपने कार की चाबी अपनी अलमारी में रखा है, घर से किसी का फोन आता है कार की चाबी कहाँ रखी है, तो आप क्या करेंगे? अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे, वर्णन करेंगे, कार की चाबी बेडरूम के बाएं तरफ की अलमारी के बीच वाले ड्रॉवर में एक छोटे से पर्स में रखी हुई है, और वो व्यक्ति आपके तीसरे नेत्र का अनुकरण करेगा। पहले आपके बेडरूम में जाएगा, अलमारी खोलेगा, बीच का ड्रॉवर खोलेगा, पर्स खोलेगा, चाबी निकालेगा। आपने यहां बैठे उसको इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, कैसे दिया? कुछ भी नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं बताया, आपने अपने तीसरे नेत्र से उसका तीसरा नेत्र खोल दिया। ऐसे ही जब हम किसी को ज्ञान देते हैं तो क्या कहते हैं? आप कौन है? सामने वाले को बताते, आप ये 5 फीट का हार्ड मास का पिंजर है, इस पिंजर के भ्रुकुटी के मध्य में हाइपोथैलेमस के नजदीक एक आत्मा है, वो आत्मा एक शाइनिंग स्टार की तरह से है, ना मेल है ना फीमेल है, शरीर की आयु 50 साल है लेकिन उसकी आयु तो अनंत है। इस अर्थ में ये शरीर कपड़ा है, आप बताते जाते हो और उसको अनुभव होता जाता है। तो जब हम किसी को कार की चाबी का ज्ञान दे सकते हैं तो क्या किसी को आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकते? ये भी तो वही तरीका है। आत्मा दिखाई नहीं देती है लेकिन आत्मा का रूप अवश्य है, और आत्मा का जो रूप है वो स्टार की तरह से है। वो स्टार कितना सूक्ष्म है या कितना बड़ा है, स्टार इतना बड़ा भी हो सकता है और स्टार सुई की नोक से भी छोटा हो सकता है। वो दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि उसके पीछे दो कारण है। ये जो हमारी आंखें ये इस भौतिक जगत को देखने के लिए बनी। कार की हेडलाइट होती है ना, कितना देख सकती है बताइए? वो सिर्फ सामने का देखती है। वो इसी उद्देश्य से बनाई गई है कि सिर्फ सामने का देखेगी। लाइक दैट ये भी एक कार है, और इस कार की हेडलाइट भी इसी उद्देश्य से बनाई गई कि सिर्फ सामने देखेंगे। थोड़ा बहुत मुड़के देख लेती हैं, पर असुविधा होती है। मुड़के देखेंगे तो आप चल नहीं पाएंगे, आप चलते चलते सामने का ही देख सकते हैं। भौतिक दुनिया में इस शरीर रूपी कार को चलना है, भौतिक चीजों को देखना है। भाई आपके रास्ते में कोई कंकर नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई कांटा नहीं, अंधेरा नहीं, बस ना इतना ही उद्देश्य है ना इसका, वो उद्देश्य ये आंखें पूरा कर रही। इसलिए गीता में कहा कि भगवान को अर्जुन ने कहा कि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, तो भगवान ने कहा कि ये ले मैं तेरे को तीसरा नेत्र देता हूं, अब तू मेरे को देख। क्यों? क्योंकि इन दो ये जो दो आंखें हैं ये मुझे देखने के लिए बनी ही नहीं, तो कैसे देखेगा मुझे? मुझे देखना है तो मेरे से ये तीसरा नेत्र ले। और जैसे ही तीसरा नेत्र दिया तो अर्जुन का वर्णन ही बदल गया। आप तो ऐसे हो ऐसे हो, आपको ये है आपको ये है, वो भक्ति मार्ग की बातें ही हैं। लेकिन हमारे लिए उसमें सीखने की बात ये है कि अगर अपना रूप भगवान को दिखाना है तो वो क्या करता है? पहले तीसरा नेत्र देता है। और चूंकि आत्मा और परमात्मा की क्या कहेंगे, राशि एक है या क्वालिटी एक है या वो एक ही प्रकार के हैं, तो दोनों पे एक ही बात लागू होती है। तीसरे नेत्र से आत्मा दिखेगी और तीसरे नेत्र से ही परमात्मा दिखेंगे। ये जो भाई जी ने सवाल पूछा कि आत्मा दिखाई नहीं देती है, ये सवाल भी मुझे केनिया में डॉक्टर भाई साहब ने पूछा था। मैं उसका जिक्र करने वाली थी, भाई जी ने बीच में ही पूछ लिया। आप सब क्या समझते हैं, आत्मा दिखनी चाहिए थी? क्या विचार? दिख जाती तो अच्छा था। एक फायदा ये था कि अपने को आत्मा का अभ्यास करना सरल हो जाता है ना। अब वो दिखती नहीं है, मन को टिकाते हैं दिखती नहीं है। फिर कईयों को ये ख्याल आ जाता है पता नहीं है कि नहीं, जब दिखती नहीं है, क्योंकि दिखने वाली चीजों से अपन हिरे हुए हैं। तो मैंने उन भाई साहब को कहा, भाई साहब आप तो डॉक्टर हैं, आपकी सभा में भी कई डॉक्टर बैठे होंगे, डॉक्टर ना भी बैठे हों तो भी मैं जिस बात की चर्चा कर रही हूं उसका कनेक्शन कईयों के साथ है। वो जब सुनते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा किस किस के साथ है। तो मैंने उनको कहा कि एक जमाना था जब लोगों को इस शरीर में खून होता है इस बात का पता नहीं था, और खून निकाला जा सकता है और स्टोरेज हो सकती है, किसी दूसरे में डाला जा सकता है। आज के जमाने में पता पड़ गया, कुछ फायदे हुए कुछ नुकसान भी हुए। फायदा ये हुआ कि अपन किसी को जीए दान दे सकते हैं, रक्तदान जीए दान अच्छी बात है। लेकिन नुकसान ये हुआ कि कई लोगों ने इलीगल ब्लड बैंक भी बनाए। मैं एक बार एक जेल में गई थी तो वहां एक डॉक्टर साहब थे, अंग्रेजी में उन्होंने मेरे से सवाल पूछा। तो मैंने जेलर से पूछा ये अंग्रेज यहाँ क्या कर रहा है? तो जेलर ने कहा कि ये इस शहर का मशहूर डॉक्टर है और ये इसने इलीगल ब्लड बैंक बनाया। जो भी पेशेंट आते थे उनको ट्रीट करने के बहाने खून निकालता था और फिर उसको बेचता था। तो ये और इसकी बीबी दोनों थे, बीबी तो भाग गई पकड़ में नहीं आई और ये पकड़ में आ गया, तो ये अब जेल में है। तो ये एक अच्छी चीज के साथ एक बुराई भी जुड़ गई। जब तक लोगों को ये नहीं पता था कि शरीर में दो किडनी और एक से भी काम चल सकता है, तब तक आदमी ठीक ठाक था। लेकिन उसके बाद इल्लीगल ऑर्गन्स बिजनेस होने लगे, लोग पकड़ पकड़ के अंग निकालने लगे, गरीब लोग अंग बेचने लगे। थोड़े दिन पहले मैंने समाचार सुना था, दिल्ली में ऐसे गरीब लोग भी हैं कि जब उनका पैसा खत्म हो जाता है और व्यसनों के शौकीन है तो वो किडनी बेच करके उससे व्यसन करते हैं। तो ये भी एक नया क्राइम पैदा हो गया। और जब तक लोगों को ये नहीं पता था कि ऊपर से आने वाली आत्मा शरीर रूपी कपड़ा मेल का पहनेगी कि फीमेल का पहनेगी, तब तक आत्माएं रंगमंच पे शांति से अपना रोल प्ले करती थी। पर जब से इस कपड़े के भेद का पता पड़ने लगा, तब से क्या हो गया, इंडिया में तो एक बहुत बड़ी, इंडिया में, मैं अभी थाईलैंड गई थी, वहां ये प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पहले पूछा, जाते यहां कन्या भ्रूण हत्या है क्या? बोला नहीं, यहां कन्या भ्रूण हत्या नहीं है, यहां कन्याओं का बहुत मान है क्योंकि कमाती वही है और उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है, पेरेंट्स को वही खिलाती हैं, 10 में से 2 भाई काम करते हैं, बाकी सारा काम महिलाएं करती हैं। फिर मैं बर्मा में गई, वहां भी मैंने जाते ही पूछा, यहां कन्या भ्रूण हत्या है क्या? हो तो जो मेरा प्रोग्राम रखो वो इसी पे रखना। उन्होंने कहा यहां भी कन्या भ्रूण हत्या नहीं है, यहां भी कन्याओं का बहुत मान है। तो मुझे लगा कि ये सबसे बड़े से बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की है, और ये भी किस लिए हो रही है, क्योंकि ये चीजें दिखने लगी। अब आप ये विचार कीजिए, अगर आत्मा दिखने लगती तो क्या होता? कभी ना कभी तो आप हॉस्पिटल में जाते और डॉक्टर आपकी आत्मा निकाल लेता, और उसका कोई प्रिय व्यक्ति होता जिसकी निकल रही होती, उसकी जगह वो ट्रांसप्लांट कर देता, तो आप तो हॉस्पिटल भी ना जाते डरते। और इस तरीके से जो अमीर लोग हैं वो कभी संसार छोड़ के नहीं जाते, और गरीब लोग संसार में कभी रह नहीं सकते। तो बाबा के तो सारे बच्चे गरीब हैं, क्योंकि वो गरीब निवाज है। फिर क्या होता? फिर ये ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन होती? इसलिए केवल एक ही स्थान है जहां सब बराबर है, एक ही समय है जहां सब बराबर है, और वो समय कौन सा है? वो समय है अंतिम घड़ी। आया है जो जाएगा, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, आने वाले को लोग रोक देते हैं, वो एक जगह नहीं तो दूसरी जगह आएगा, लोग राजी हो जाते हैं कि हमने उसको आने से रोक दिया। वो आएगा और जाने वाला भी जाएगा, ना आना किसी के वश में है न जाना किसी के वश में। और ये इसलिए क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं दी, और अगर श्री बाबा दिखाई देने लगते तो क्या होता? अच्छे अच्छे मंदिर जो दिख रहे हैं, तिरुपति बालाजी का दिखने वाली मूर्ति है, देखो कितनी लंबी लाइन है और कितना लंबा लंबा चढ़ावा है। अगर ऐसे ही शिव बाबा हो जाते, वो तो तिरुपति माना तीन का पति, वो तो केवल नाम का तिरुपति है, पर असली तिरुपति तो शिव बाबा है। तो अगर ये तिरुपति भी दिखने लगता तो क्या होता? पता नहीं कितनी लंबी लाइन लगती। इसलिए क्या विचार है, दिखना चाहिए? शुक्र है ना आत्मा दिखती है ना परमात्मा दिखता है। तो वास्तव में आत्मा रियलाइज की जाने वाली सत्ता है, और रियलाइज में दो शब्द, रियल प्लस आइज, मीनिंग क्या निकला? रियल माना वास्तविक, आईज माना आंखें। वास्तविक आंखें कौन सी? दीज आर फॉल्स आईज, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, ये तो फॉल्स आईज, झूठी आंखें, कभी भी धोखा दे सकती, कभी भी जा सकती। शरीर है, आंखें चली गई, धोखेबाज। और धोखेबाज नहीं भी हो तो देखो, पीछे का नहीं दिख रहा, छत के बाहर का नहीं दिख रहा, दीवारों से परे नहीं दिख रहा, अंधेरे में नहीं दिखता, बुढ़ापे में नहीं दिखता, आजकल तो कईयों को छोटी आयु में भी नहीं दिखता। तो काया झूठी तो उसकी आंखें भी झूठी, पर रियल आंखें कौन सी है? जो रियलाइज करती हैं। तो रियल चीज को रियलाइज ही तो किया जाएगा, फाल्ज चीज को फाल्ज आंखें देखती, झूठी दुनिया को झूठी आंखें देखती, और जो रियल चीजें उसको रियल आईज देखती हैं, अर्थात उसको रियलाइज किया जाता है। केवल आत्मा परमात्मा की बात नहीं है, जो प्रेम है, अब प्रेम भी दिखता नहीं है, लेकिन प्रेम को हम रियलाइज करते हैं। किसी की आवाज को हम देखते नहीं, उसको हम रियलाइज करते हैं। मान लीजिए आज हम एक व्यक्ति से मिले, हमने उसको अच्छे से देख लिया, कल हम बीमार पड़े, हमारी आंखों पे पट्टी बांध दी डॉक्टर ने, आंखों की तकलीफ हुई, वही व्यक्ति हमसे हॉस्पिटल में मिलने आया, वो पूछेगा आपका क्या हाल चाल है, और हम झट कहेंगे अरे अमुक आप आ गए मुझे देखने, मेरी आंखों पे तो पट्टी बंधी है, किसने पहचाना? आवाज को पहचाना, किसने पहचाना? आंखों पे पट्टी है, आत्मा पे तो पट्टी नहीं है ना, आत्मा ने पहचान ली। तो कितनी चीजें जिनको हम रियलाइज करते हैं। ये जो पुलिस वाले हैं, इन आंखों को धोखा देख के कितने लोग निकल जाते हैं, मेल फीमेल बन के निकल जाता है, मोटा पतला बन के निकल जाता है, बूढ़ा जवान बन के निकल जाता है, जवान बूढ़ा बन के निकल जाता है। खूब धोखा खाती है इनकी आंखें, क्योंकि आंखें तो धोखा खाती ही रहती है धोखे की दुनिया में। लेकिन वही व्यक्ति अगर बोल पड़े तो बोलते ही उसकी असलियत सामने आ जाएगी, ये मेल है कि फीमेल है, बूढ़ा है कि जवान है। इसलिए का रियलाइज करने वाली जो सत्ता है वो रियल सत्ता है, और जो देख रही है वो फाल्ज, वो कब देखना बंद कर दे, कब देखने की शक्ति क्षीण हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। मान लीजिए मैं आपको अभी एक कड़वा शब्द बोल दूं, चुभने वाली बात बोल दूं, मैं मेरा ही नाम लेती हूं, जब मैं वो चुभने वाला शब्द बोलूंगी तो मुझे बोलते हुए कौन देखेगा? आंखें देखेंगी। और जब वो कड़वा शब्द मैं बोलूंगी तो उस शब्द को सुनेगा कौन? कान सुनेंगे। क्या आपके कान में दर्द होगा? क्या आपकी आंख में दर्द होगा? दर्द कहां होगा? आत्मा कहां है? कई बार हम कहती हैं कि इसने मुझे बड़ी चोट मारी, शरीर के ऊपर कोई निशान नहीं है चोट का। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा अरे कोई चोट मारता है तो वो निशान पुलिस में दिखाना पड़ता है, इसने मुझे चोट मारी, घाव हो गया, या चलो किसी ने स्पर्श भी किया तो उंगली के निशान आ जाते हैं। कई निशान नहीं, कुछ नहीं, और आप कहते हो इसने मुझे बड़ी चोट मारी। कैसी मारी चोट? कोई प्रमाण दिखाओ, है आपके पास कोई प्रमाण? क्योंकि जब शरीर को चोट लगती है उसका प्रमाण है, लेकिन जब आत्मा को चोट लगती है कोई प्रमाण नहीं। वो तो बहुत दूर से भी मारी जा सकती है, लंदन में बैठा कोई आदमी आपको फोन करके आपको चोट मार सकता है। तो ये चोट किसको लगती? ये आत्मा को लगती। कान को दर्द नहीं, आंख को दर्द नहीं, दर्द किसको हुआ? आत्मा को दर्द। तो जरूर कोई भीतर है जिसको दर्द हुआ, जो महसूस कर रहा। अब डॉक्टर के पास जाएंगे, फिजिशियन के पास, भाई मैं सारी रात नहीं सोया, मुझे बहुत तकलीफ हुई, और वो आपके सारे पैरामीटर चेक करेगा, आपकी शुगर लेवल ठीक है, आपका टेम्परेचर भी ठीक है, आपका बीपी भी ठीक है। आप कहते हो कि मैं सारी रात नहीं सोया, आपको भ्रम है, आप बिल्कुल ठीक हो। क्यों? क्योंकि उसकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो केवल फिजिक को मापती है, लेकिन चोट कहाँ लगी है? तो हमारी टू काइंड्स ऑफ एग्जिस्टेंस हो गए, एक फिजिकल एग्जिस्टेंस और एक मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस। ये फिजिकल, ये हार्डवेयर है, इसके भीतर सॉफ्टवेयर छिपी हुई। अगर वो सॉफ्टवेयर एकदम ओपन हो वो तो बहुत अमूल्य चीज है, इसलिए उसको कितना गहरा छिपा रखा है। देखो तो कितनी उसके ऊपर परत, हड्डी और उसके बाद फ्लैश और उसके बाद त्वचा, कितना गहरा उसको छिपा रखा है। और इसीलिए हम हेलमेट पहनते हैं। मैंने एक बार सवाल उठाया था कि भाई आप सिर की रक्षा करते हो, आप घुटनों की रक्षा क्यों नहीं करते? यहां भी कुछ पहनाओ। जब गाड़ी की दुर्घटना होती है तो चोट तो सब जगह ही लगती है, कंधे को भी लग सकती है, पांव, हाथ, सिर्फ सिर को थोड़े चोट लगती है। आप सिर्फ हेलमेट सिर में क्यों पहनाते हो? पहले वो युद्ध के मैदान में जाते थे तो वो कवच और वो सब ऐसे पहनाया करो, सब कुछ पहन के बैठे वो, लेकिन नहीं, वो सिर्फ हेलमेट सिर में पहनाते। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो असली ड्राइवर है, वो यहां बैठा हुआ है और ये उसकी सीट है। उसकी सीट हिलनी नहीं चाहिए, उसकी सीट पे कोई फ्रैक्चर भी नहीं आना चाहिए। अभी देखो मैं इस कमरे में बैठी हूं, मेरी सीट तो यही है ना। अब मान लीजिए बाहर से कोई पत्थर आता है और वो जाकर के पिछले दरवाजे पे पड़ता है तो मैं यहां फिर भी बैठी रहूंगी, लेकिन कोई पत्थर सीधा आकर के इस टेबल पे पड़ता है तो मैं क्या करूंगी, उठ के भागूंगी कि नहीं? तो जब कोई भी दुर्घटना घटती है और चोट यहां लगी है, अगल बगल में जब आत्मा को लगती है तो आत्मा चौकन्नी हो जाती है, मेरी सीट टूटने वाली है, और वो भाग जाती है। और मान लीजिए पांव को लगी चोट, घुटने को लगी, तो आत्मा फिर भी इत्मीनान से बैठी रहती है, मेरी सीट सुरक्षित है, कोई बात नहीं। तो व्यक्ति जाता नहीं है, बच जाएगा, वो हाथ पांव चला जाएगा पर वो बच जाएगा। तो उन्होंने भी ये नियम रखा कि भाई ये सुरक्षित रहे। तो स्पष्ट है ना, आत्मा कहाँ है, राजा कहाँ बैठा है? उनको ज्ञान नहीं है कि यहां आत्मा है, लेकिन फिर भी उन्होंने हेलमेट पहनाया बिना ज्ञान के भी। लेकिन बिना ज्ञान के भी समझ जाए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है बॉडी। और आत्मा देखिए कहां बैठी है, बड़ा सिस्टेमेटिक बना है ये पूरा बॉडी। आत्मा कहां बैठी है? आंखों से ऊपर। जब राजा बैठता है ना अपने यहां, जो सतयुग का जो एक मॉडल है जिसमें लक्ष्मी नारायण बीच में बैठे हैं, फिर दाएं बाएं थोड़े वो छोटे रियासतों के राजा बैठे हैं, ऐसे एक चित्र है अपना। तो जो राजा होता है वो तो राजा रानी दो है ना सतयुग में, यहां तो राजा एक ही है, तो उसका सिंहासन सबसे ऊपर। फिर राजा के बिल्कुल करीब कौन बैठता है? जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, सेनापति होता है, जो भी होता है। तो बॉडी के जितनी भी ऑर्गन्स हैं उनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? आंखें। तो आत्मा के सबसे करीब आंखें। आत्मा को मैक्सिमम सूचनाएं कहां से मिलती हैं? आंखों से मिलती हैं। हमारे भीतर 85% जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो आंखों से जाती है। और लोग कहते हैं आंख गई तो जहान गए। भगवान किसी की आंखें मत लेना। दांत गए कोई प्रॉब्लम नहीं, कान गए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, आंख गई आदमी कुछ नहीं कर सकता। सबसे बड़ी सजा है अंधाव, तो ये बिल्कुल करीब है। और इसके बाद जो 15% सूचनाएं हैं वो कानों से जाती है। तो सेकंड नंबर किसका है? कान और नाक बराबर है। ये श्वास लेता है, श्वास एक सेकंड भी रुकनी नहीं चाहिए, और इन्फॉर्मेशन कानों से जाती है। इन्फॉर्मेशन के ये दो सबसे बड़े जरिए हैं, आंख और कान। उसके बाद मुख को इनसे नीचे रखा गया है, क्योंकि ये आत्मा को इन्फॉर्मेशन नहीं देता। आत्मा में जो कुछ भरा हुआ है उसको बाहर निकालता है, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आत्मा के लिए। जो उसको देता है वो उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सूचना इकट्ठी करके लाता है इधर उधर की। तो राजा के करीब ये दोनों हैं। उसके बाद मुख है, दो काम करता है, खाता भी है और उगलता भी है। अंदर जो भरा हुआ है उसको बाहर निकालता है, तो नुकसानकारक आत्मा के लिए। इसमें जो भरा है वो बाहर उगल देता है। और उसके बाद हाथों की बारी आती है। ये सर्वेंट है, इसलिए इनकी सीट और भी नीचे। मान लो पांव में कांटा चुभ गया तो आंख नहीं जाएगी इतनी नीचे गंदी जगह में, कान भी नहीं जाएगा, मुख भी नहीं जाएगा। ये सर्वेंट है, इनको भेजते हैं। ये बेचारे गंदी मंदी सब जगह हाथ डालते हैं, सब साफ करना, ये करना वो करना, ये इनका काम। और इनसे भी ज्यादा लोअर कैटेगरी वो फिर पांव की, जिसे कभी ऊपर उठने की जगह ही नहीं मिलती। ये ऊपर उठ के सिर तक भी जाते हैं, पांव को वो भी अलाउ नहीं, तुम नीचे ही रहो। इसलिए बाबा भी क्या कहते हैं, ये ब्राह्मण चोटी, ये मस्तक देवता, ये देवता, उसके बाद ये क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, और फिर ये शूद्र। तो शरीर के भी ये शूद्र अंग। तो ये बिल्कुल नजदीक बैठी है आत्मा की, सूचनाएं यहां से तुरंत जाती, लेकिन ये इन सबसे ऊपर है। और इन सबसे ऊपर क्यों है? क्योंकि इन सबकी मालिक है। मालिक की सीट हमेशा अपने सबॉर्डिनेट से ऊपर होगी। तो देखो आप कहां बैठे हो, महसूस करो कहां बैठे हो। मालिक हो ना, तो इन सबसे ऊपर हो आप, राजा हो। देखो अपनी सीट कितनी ऊंची सीट है आपकी, कितनी बढ़िया जगह आपको दी है बाबा ने, प्रकृति ने कितने सिस्टम से बॉडी को बनाया है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जहां आत्मा का निवास है उस जगह का कोई रोग नहीं है। दुनिया में कितने प्रकार के रोग हैं, मस्तक का, इस जगह का कोई रोग, भाग करके किसी को कोई छोटी मोटी फुंसी निकल आए वो अलग बात है, पिंपल्स निकल आती हैं, वो भी चेहरे पे इधर इधर पिंपल्स ज्यादा निकलती हैं, आपने देखा होगा। ये जो तिलक लगाने वाली जगह है यहाँ पिंपल्स रेयर, कभी किसी जमाने में स्मॉल पॉक्स होती थी तो भी साइड में इधर इधर निकलते थे। बिल्कुल ये जो आत्मा का स्थान है, स्मॉल पॉक्स के चिन्ह यहाँ बहुत रेयर। तो हम क्या देखें, हमारे सामने जो व्यक्ति है हम क्या देखें उसका? आत्मा को देखें, देखो कितनी बड़ी जगह है देखने के लिए। और बिल्कुल किसी के सामने आप देखोगे तो सबसे पहले मस्तक ही दिखाई देगा उसका। जैसी हमारी हाइट होती है, जहां हमारी आंखें हैं, झुकना ना पड़े, ऊपर ना उठाना पड़े, बिल्कुल आंखों की सीध में सामने वाले की क्या दिखाई देगी? आत्मा दिखाई देगी। कोई महात्मा हमारे घर में आता है तो हम बच्चे को लेके क्या कहते हैं, महात्मा जी जरा क्या करना, दृष्टि देना, इसका जरा मस्तक देखना, कैसा भाग्य है इसका। इसका मतलब क्या हुआ? घर में दो प्रकार के लोग आते हैं बच्चे को देखने, एक महात्मा आता है और दूसरा हमारे नाते रिश्तेदार आते हैं। जो नाते रिश्तेदार होते हैं वो बच्चे को कहां से कहां तक देखते हैं? माथे से नीचे नीचे। वो कौन है? वो सांसारिक प्राणी। महात्मा कहां देखता है? मस्तक से ऊपर ऊपर। तो जो मस्तक से ऊपर देखे, आंखों से ऊपर देखे, वो महात्मा, और जो आंखों से नीचे देखे वो साधारण आत्मा। साधारण लोग तो यही देखते हैं ना, किसी व्यक्ति को देखेंगे तो क्या देखते हैं, इसका नए नक्श कैसा है, और महात्मा देखेगा तो क्या देखेगा, इसका मस्तक कैसा। तो हम कौन है? महात्मा है ना। बाबा ने हम सबको क्या बनाया? महात्मा बनाया। महात्मा की नजर कहां जाएगी? मस्तक पर, भाग्य के केंद्र बिंदु पर, भाग्य पर। और वो किसी को वरदान भी देगा तो भाग्य को उजला बनाने वाला वरदान देगा। तुम ऐसा करो तो तुम्हारा भाग्य ऊंचा बनेगा। दुनिया में लोग क्या राय देते हैं? तुम ऐसा करो तो तुम्हारी शक्ल सुंदर बनेगी, तुम ऐसा करो तो तुम्हारा वगैरह वगैरह। लेकिन महात्मा क्या कहेगा? तुम ऐसा करो, तुम्हारा माथा चमकेगा, तुम्हारा तेज चमकेगा, तुम्हारा भाग्य निखरेगा। तो हमारा सारा कारोबार यहां से चलता है। सतयुग में सुंदरता का मापदंड क्या था? मस्तक। जब लक्ष्मी और नारायण की आपस में शादी होगी तो क्या देखेंगे? आत्मा आत्मा को देखेगी। सॉरी, लक्ष्मी नारायण की नहीं, श्री राधा श्री कृष्ण की, क्योंकि सतयुग में नेचुरल आत्मिक स्मृति है। तो क्या देखेंगे? आत्मा आत्मा को देखेगी। आपस में जो संबंध जुटेगा वो आत्मिक दृष्टि पे आधारित होगा। जहां आत्मा है वहां तेज होता है, तो मस्तक बड़ा तेजोमय होगा। द्वापर युग में लोग शादी करेंगे तो क्या देखेंगे? मस्तक से नीचे देखेंगे, नए नक्श देखेंगे। फिसल करके लोग कहां आ गए? फिसल गए ना, सीट से नीचे आ गए फिसल के। तो जब सीट से फिसल के नीचे आ गए तो भाग्य भी फिसल गया, समस्याएं पैदा हो गई। कलयुग में आकर के फिर और नीचे फिसल जाते हैं। तो जितना नीचे फिसलते हैं उतने पाप बढ़ते हैं, उतनी समस्याएं बढ़ती हैं। अब बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा हमको फिर फिसले हुओं को ऊपर, बच्चे फिसल के नीचे नहीं आओ, मैं तुमको ऊंची सीट पे बिठाता हूं, तुम फिर क्यों फिसल के नीचे आ जाते हो? मुरली में बाबा कहते हैं ना, फिसलो मत, हमको सतयुग में जाना है। तो हमको अपनी दृष्टि सतयुगी बनानी है, आत्मा को देखना है। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि देखो, चकोर नीचे रहती है फिर भी चांद को देखती है, और चील आसमान में उड़ती है फिर भी नीचे, वो भी उसको भी उस नीचे भी किसको देखती है? नीचे भी गंदगी को देखती है। तो हम बाबा के बच्चों को कैसा बनना है? चील जैसा कि चकोर जैसा? चकोर जैसा बनना है, मस्तक को देखना है। ये मस्तक के बीच आत्मा विराजमान है, तब ये व्यक्ति बैठा है, तब ये व्यक्ति की आंखों में रोशनी है। आप कभी देखना, एक महीने का बच्चा है, माँ के बाजू में सोया है। एक महीने का बच्चा तो ऐसा ही होता है जैसे जैसे आंखें बंद होती हैं उसकी, लेकिन माँ उसके साथ कितनी बातें करती है, एक महीने के बच्चे के साथ। और एक मुर्दा 60 साल का 70 साल का बड़ा ज्ञानी बड़ा विद्वान, उसके साथ बैठ के कोई बात करेगा? बात करने को मन करेगा? क्योंकि आत्मा जैसी शरीर में आती है, बेशक आंखें बंद हो, लेकिन एक एक कोशिका में रोशनी आ जाती है। जैसे आपने घर में बल्ब जलाया, आप देखते हो ना, साइन बोर्ड लगे होते हैं, साइन बोर्ड के पीछे एक ट्यूब जल रही है तो साइन बोर्ड कैसा लगता है? पढ़ने में आता है। आप उस ट्यूब को निकाल दो तो साइन बोर्ड कैसा लगेगा? पढ़ने में ही नहीं आता, कोई देखना ही नहीं चाहेगा। तो एक बच्चा, ट्यूब भीतर जल रही है इसलिए उससे बात करने को मन करता है, उसके चेहरे पे रौनक है और मुर्दे की ट्यूब बुझ गई तो अब वो बुझा हुआ साइन बोर्ड है, उसको देखने को मन नहीं करता है, कौन देखेगा? उसकी आंखों में क्या आ जाता है? ऐसे एकदम जैसे भयानक सी आंखें हो जाती है। एक भी कोशिका जीवंत नहीं है, एक में भी आत्मा का प्रकाश नहीं है, तो वो एकदम ऐसे बुझा हुआ, एकदम अंधकारमय सा लगता है वो फेस। उस फेस से वाइब्रेशन ऐसे आते हैं। तो आत्मा बिना बोले भी अपनी चेतनता का इजहार करती और हमें उसकी महसूसता आती। जब शरीर इस दुनिया में आया, कितना केजी का था? 3, 4, 2.5, 2, चलिए हम 3 मान लेते हैं एवरेज। और अब कितना केजी है? 70 मान लेते हैं। इसमें 67 केजी क्या भरा हुआ है? ये 3 से 70 तक कैसे पहुंच गया? सेल्स कैसे बढ़े? क्या तरीका अपनाया? क्या जादू लगाया? भोजन, भोजन में आपने क्या खाया? भोजन के पदार्थ क्या क्या थे? दाल, चपाती, सब्जी। तो इस शरीर में क्या भरा हुआ है? दाल, चपाती, सब्जी। उसका परिवर्तित रूप, उसका परिवर्तित रूप। तो जो लोग कहते हैं कि हम शरीर हैं, इसका मतलब वो ये मानते हैं कि हम दाल, चपाती, रोटी हैं। यही मतलब हुआ ना, क्योंकि बॉडी तो उन्हीं से बना है। तो क्या हम दाल हैं? ये दाल बोल सकती है। क्या हम चपाती हैं? चपाती बोलती है, सब्जी बोलती है। तो ये बॉडी तो 70 केजी हो गया जब हम इस दुनिया में आए तब से लेके आज तक। जो 5 साल वाला शरीर था वो कहां गया? कहां गया? कहीं आपने उठा के रख दिया? जब आप 5 साल के थे आपने जो कपड़े पहने वो तो उठा के रख दिए होंगे, कहीं रख लेते हैं। वो शरीर कहां है? 10 साल वाला शरीर कहां है? 15 वाला 20 वाला कहां गया? चेंज हो गया, मर गया ना। शरीर को कहते हैं मरण धर्मा, इसका धर्म है मरना, और ये अपने धर्म को जन्मते ही निभाना चालू कर देता है। ये अपने धर्म को नहीं छोड़ता, जन्मते ही इसकी मृत्यु होनी चालू हो जाती है। कोशिकाएं मरेंगी, आपकी शक्ल बदलेगी, नाक बदलेगी, दांत बदलेंगे, होंठ बदलेंगे। ये क्यों बदल रही? क्योंकि ओल्ड मरना चालू है और नया आना चालू है। तो मरना इसकी नेचर है, ये मरे बिना नहीं रह सकता, ये प्रतिदिन प्रति सेकंड मर रहा है। लेकिन जब आप 10 साल के थे तब आपने क्या क्या किया? आप किस स्कूल में पढ़ते थे? कौन आपके टीचर थे? आप किस शहर में रहते थे? वो मेमोरी आपको है? आप सारी बातें बता सकते हैं? वो मेमोरी किस में है? ये आत्मा कितनी बड़ी हुई तब से लेके अब तक? इसका कितना वजन बढ़ा? इसका वजन नहीं बढ़ा। वजन बॉडी का बढ़ा और बॉडी में हमने 5 तत्व डाले, तो 5 तत्व बॉडी को बनाते हैं। और कहते हैं जो इकाई में योग्यता नहीं है, व्यष्टि में योग्यता नहीं है, वो समष्टि में योग्यता नहीं हो सकती है। जो माइक्रो में योग्यता नहीं है, वो मैक्रो में नहीं हो सकती है। अर्थात मकान की एक ईंट में जो योग्यता नहीं है, वो पूरे मकान में योग्यता नहीं हो सकती है। ईंट नहीं बोल सकती तो मकान भी नहीं बोल सकता। तो जो 5 तत्व हैं, उनमें से किसी तत्व में न सुनने की शक्ति है, न बोलने की शक्ति है, न महसूस करने की शक्ति है, न चलने की शक्ति है, तो उन 5 तत्वों से बने इस बॉडी में वो ताकत नहीं है। बोलना, चलना, महसूस करना, सुनना, रियलाइज करना, ये बॉडी की योग्यताएं नहीं है। बॉडी में बिलियन ट्रिलियन सेल्स, जब हम कहते हैं मैं बोला तो कौन सी सेल बोली? जब आप कहते हैं मैंने सुना, कौन सी सेल ने सुना? सेल में वो योग्यता है ही नहीं। ये योग्यता किसमें? मैंने सुना, मैंने बोला, मैंने देखा। और आप कितने भी काम करें, हर बार कहते हैं मैंने किया। देखा किसने? मैंने। सुना किसने? मैंने। बोला किसने? मैंने। छुआ किसने? हर बार ये एक ही है क्या, जो देखता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है, छूता भी है? क्यों? क्योंकि बाहर कई इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन भीतर जो कोऑर्डिनेटर है वो एक ही, पर वो दिखाई नहीं देता। मान लीजिए आप एक बस स्टैंड पे खड़े हैं और एक भिखारी आता है, कहता है बाबूजी मैं बहुत भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। आपकी आंखों ने देखा कि इसकी बड़ी दयनीय अवस्था है, आपके कानों ने सुना इसकी आवाज में बड़ी करुणा है, देखा आंख ने, सुना कान ने, आपके बैग में एक बिस्किट का पैकेट आपने निकाल के भिखारी को पकड़ाया, हाथ को किसने कहा बिस्किट निकालो और दे दो? आंख बोलती नहीं, कान बोलता नहीं, देखा तो आंख ने था, सुना तो कान ने था, हाथ तक सूचना कहां से गई? एक कोऑर्डिनेटर भीतर है, आंख ने देखा और भीतर सूचना पहुंचाई ये व्यक्ति सचमुच भूखा लग रहा है, कान ने सुनते ही सूचना भीतर पहुंचाई ये व्यक्ति सचमुच भिखारी बहुत मुसीबत में है, और अंदर बैठे उस मालिक ने डिसीजन लिया कि अगर ऐसी बात है तो चलो मेरे नौकर बिस्किट निकालो और इसकी मदद करो, तो नौकर ने फटाफट काम कर दी। लेकिन ये विद इन सेकेंड हो जाता है, दुनिया में तो ये काम होने में देर लगती है। एक सूचना देने गया, खड़ा रहा, फिर उसने सुना, फिर दूसरा सूचना देने की लाइन में लगा, बड़ी देर लगती है। फिर साहब मोटी बुद्धि का है, डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाया, सुबह सूचना सुनी थी और शाम को बिस्किट का पैकेट बाहर निकला। दुनिया में तो ऐसे होता है, लेकिन यहाँ विद इन 1 सेकेंड सारे काम हो जाते हैं, तो पता नहीं पड़ता कि किसने करवाया। हमको लगता है हाथ ही कर रहा है, हमको लगता है आंख ही कर रही, कान ही कर रहा, लेकिन नहीं, अंदर कोई बैठा है, 1 सेकेंड में सारे काम कर लेता है। अच्छा वो निकल गया, अब कोई भिखारी आता है, बाबूजी बहुत भूखा हूं, बाबूजी के बाजू में बिस्किट का ढेर पड़ा हुआ है, अब बाबूजी कुछ नहीं करते, आंखें हैं, कान है, हाथ है, तो कौन है ये सब करने वाला? आत्मा। तो प्यारे बाबा ने हमको इतना ऊंचा ज्ञान दिया है जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। दुनिया के ज्ञान जहां खत्म होते हैं, बाबा का ज्ञान वहां पे शुरू होता है। इतना ऊंचा ज्ञान हम सबको मिला है, इसलिए हमारा पहला पाठ और आखिरी पाठ यही, और इसको हमको अनुभव करना है। जैसे अभी जो बातें आपको आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये बातें चलती फिरती अनुभव करने की है। अब चलते फिरते छोटी छोटी चीजों को देखो, उनको रियलाइज करो कि ये कैसे हो रहा, आपको हर चीज में आत्मा का फार्मूला मिलेगा। आत्मा के फार्मूले के बिना दुनिया की भी कोई चीज बनती नहीं है। देखो आत्मा की, आत्मा का पाठ इतना मीठा है, मैंने अभी घड़ी देखी तो मुझे लगा मैं काफी आगे निकल गई हूँ। इसकी चर्चा कितनी प्यारी, आप करते जाओ थकोगे ही नहीं, क्योंकि ये बेस है ना, पहला पाठ है ना, सारी बातें तो इसी पे जुड़ी हुई हैं, सारा ज्ञान इसी से जुड़ा। ओम शांति।
ओम शांति। ऐसे लग रहा है सुनते रहे सुनते ही रहे। बहुत बहुत डीपली उर्मिला दीदी ने हमें आत्मा का स्वस्थिति की महसूसता करवाई। इसलिए फर्स्ट पार्ट था, अभी 15 मिनट का ब्रेक है, फिर सेकंड पार्ट शुरू होगा। अभी ये बाह्य बातें सुनाई, अभी आंतरिक रीति से अनुभव कैसे करें आत्मनिरीक्षण। तो अभी एक मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे।